अपने सभी प्रिय साथियों को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 3 दिसंबर 2015 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इसी के साथ ही मैं स्वागत करता हूं अपने उन 7 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की फरवरी 2016 में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन नौजवान साथियों के नाम हैं प्रियंका लिखार जो नागपुर से हैं, बलवीर सिंह आप कासन उत्तर प्रदेश से हैं, जितेंद्र कुमार भारती आप मुंबई से हैं, अतुल पाल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं, रश्मि सिंह मुंबई से हैं, श्रीकांत बारमल भी आप भी मुंबई से हैं और अखिलेश कुमार यादव लखनऊ से हैं। तो प्रियंका, बलवीर, जितेंद्र, अतुल, रश्मि, श्रीकांत और अखिलेश, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, अब फरवरी आने में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, 3 महीने से भी कम का वक्त है और आप लोगों को सबको जो एक मानसिक तैयारी करनी है, मुझे लगता है कि उसको देखते हुए ये 3 महीने का वक्त बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। दोस्तों, आप सबको अभी से इस बारे में मैं सचेत करना चाहूंगा कि प्लीज सही मायने में यदि आप पूरी ईमानदारी के साथ मन बनाकर यहां आएंगे और आने से पहले एक जो मानसिक तैयारी की जाती है जिसका मैं समय समय पर लगातार उल्लेख करता रहता हूं, अगर आप वो तैयारी करके आएंगे तो आप देखेंगे कि आप कितना कुछ यहां से लेकर जाते हैं। मित्रों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, 3 बैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं। मुझे लगता है कि शायद रजिस्ट्रेशन कराने से पहले बहुतों से आप लोगों की बातचीत भी होती होगी और उससे उनसे आपको फीडबैक मिलता होगा और खासकर मेरे पास जो लगातार फीडबैक आते रहते हैं उनके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं, ये मेरे अपने दिमाग की उपज नहीं है। मित्रों, बहुत से फीडबैक आते हैं, बहुत से अच्छे मेल आते हैं, मैं उनके केवल नाम का उल्लेख कर देता हूं, उन मेल को मैं पढ़कर सुनाता नहीं हूं, लेकिन डेफिनेटली वो जो मेल में अपने जिस बातों का उल्लेख करते हैं, जितने परिवर्तन का उल्लेख करते हैं, उन्हें सुनकर एक अद्भुत किस्म की शांति मिलती है, आत्मसंतोष का अनुभव भी मिलता है और डेफिनेटली आप लोग जितनी अच्छी तैयारी करके यहां आएंगे, डेफिनेटली अगले चरण की तैयारी करने के लिए मुझे लगता है कि आप भी फिर अच्छा फीडबैक देकर हम लोगों को अधिक से अधिक आत्मसंतोष पाने का अवसर प्रदान कर सकेंगे। और दोस्तों, स्वागत के बाद मैं अपने उन 4 नौजवान साथियों को आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं की तरफ से, एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से, मैडम यानी कि अपनी पत्नी की तरफ से और अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने हम लोगों को सूचित किया है कि राजस्थान की पब्लिक सर्विस कमीशन के जो रिजल्ट्स प्री के आए हैं उन साथियों ने उस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। इसमें से कुछ साथी एकेडमी के क्लास के स्टूडेंट भी रहे हैं और बाकी कुछ साथी ऐसे हैं जो लगातार डेली ऑडियो से जुड़े रहे हैं। तो इन दोस्तों के नाम हैं गणपत बिश्नोई, श्रवण बिश्नोई और अमर अभय सिंह बिश्नोई, ये तीनों दोस्त जालौर के हैं और अगले हैं रमेश मीणा जो जयपुर से हैं। तो गणपत, श्रवण, अभय और रमेश, आप चारों को बहुत बहुत बधाई भविष्य की बेहतर सफलता के लिए, यानी कि मेंस को क्वालिफाई करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना भी कि आप सब अंत में अंतिम सफलता प्राप्त करके हमें इस बात की सूचित करें और इसके लिए ईश्वर आपको शक्ति दे, आप सभी को, आपको सभी को क्षमताएं प्रदान करें। दोस्तों, इसके बाद एक छोटी सी सूचना है और वो सूचना इस बात को लेकर है, खासकर छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए और स्पेशली उनके लिए जो रायपुर और आसपास के एरिया के स्टूडेंट रहे हैं और जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट बैच के हों या सेकेंड बैच के हों या थर्ड बैच के स्टूडेंट हों, उनके लिए एक सूचना है कि मैं 6 दिसंबर की दोपहर में यानी कि संडे को के दोपहर में मैं रायपुर पहुंच रहा हूं और वहां एक होटल है रेलवे स्टेशन के पास ही, सेलिब्रेशन उसका नाम है, मैं वहां रुकूंगा। तो जो भी क्लास के स्टूडेंट रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड बैच के जो स्टूडेंट रहे हैं, यदि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, अपने प्रिपरेशन के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, अपने प्रिपरेशन के पैटर्न को रिव्यू करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने एक समय निर्धारित किया है। वह 3 बजे से 4 बजे के बीच, यानी दोपहर के बाद का 3 बजे से 4 बजे के बीच वो होटल सेलिब्रेशन में आ सकते हैं। आप सबसे मुलाकात करने का मेरे लिए ये अवसर भी होगा और मैं ये देख और जान सकूंगा कि एकेडमी से जाने के बाद, एकेडमी से लौटने के बाद आप सब कहां तक और आगे अपने आप को पहुंचा सके हैं, और डेफिनेटली फिर हम मिलकर उन पुराने दिनों को याद कर सकेंगे और मुझे लगता है कि वो लम्हे हम दोनों के लिए बहुत ही खूबसूरत और अच्छे लम्हे होंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड बैच के रहे हैं वे यहाँ आमंत्रित हैं। मैं एक बार डेट फिर से आपको बता देता हूँ, 6 दिसंबर यानी कि संडे का दिन है, समय है 3 बजे से 4 बजे शाम का समय या दोपहर के बाद का समय, और स्थान है होटल सेलिब्रेशन, ये जो रायपुर का जो रेलवे स्टेशन है उसके पास में ही। मित्रों एक छोटी सी सूचना और है, वो ये कि मेरे पास बहुत से मेल आ रहे हैं और पता नहीं, मैं देख रहा हूं कि 3-4 दिनों से जो मेल आ रहे हैं उसमें मेल भेजने वाले अपने नाम का उल्लेख नहीं करते और अपने स्थान का भी उल्लेख नहीं करते। तो यदि वो चाहते हैं कि उनके मेल के साथ गंभीरता बरती जाए, मैं पढ़ता ही हूं मेल को, लेकिन जब नाम और स्थान का उल्लेख नहीं होता तो मानसिक स्तर पर थोड़ी सी गंभीरता कम हो जाती है। तो प्लीज मेल लिखते समय आप अपने नाम का उल्लेख करें और अपने स्थान का भी उल्लेख करें। आप कोई ऐसा मेल नहीं लिख रहे होते हैं कि उसमें नाम और स्थान का उल्लेख नहीं होना चाहिए, और यदि आप चाहते हैं कि आपके मेल का उल्लेख डेली आरडीओ में न किया जाए तो आप इस बात का भी उल्लेख कर सकते हैं कि मेरा नाम न लिया जाए, लेकिन आप उसमें अपना नाम और स्थान का नाम लिखेंगे तो मुझे बेहतर लगेगा। और डेफिनेटली जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड बैच के स्टूडेंट हैं उनसे क्लास में भी मैंने ये कहा था कि जब भी वो मेल लिखें तो प्लीज वो अपने बैच का उल्लेख जरूर करें। इससे हम लोगों को उनके मेल को समझने में, स्पेशली मुझको, बहुत मदद मिलती है, क्योंकि पृष्ठभूमि में ये होता है कि इस स्टूडेंट ने 15 दिन की क्लास अटेंड की है, उसकी भाषा किस स्तर पर पहुंची, मेल लिखने का तरीका किस स्तर पर हुआ, अगर स्तर ठीक नहीं है या अगर कुछ बातें बताई जानी चाहिए तो उसे भी मैं फिर अपने तरीके से सूचित करता हूं। तो दोस्तों अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज पर। मित्रों हम लोग कल फिल्म तमाशा के बारे में बातें कर रहे थे, पता नहीं मेरी बात को सुनने के बाद आप लोगों में से कितने लोग तमाशा देखने के लिए प्रेरित हुए होंगे। डेफिनेटली अगर आप लोगों ने वो फिल्म देखी होगी तो फिर आप मेरी बात को जो मैंने कल कही थी ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, और मैं जो आज उसी को लेकर के कुछ और बातें शेयर करने जा रहा हूं इसे भी अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। दोस्तों कल मैंने एक हमारे दिमाग में जो एक इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, जो कल्पना की दुनिया होती है और जो एक यथार्थ की दुनिया होती है, एक ऐसी दुनिया जिसमें हम रहते हैं और वाकई में रहते हैं, इनके बारे में आपसे बातें की थी। दोस्तों आज मैं थोड़ी सी और दूसरी बातें इसमें ऐड करना चाहूंगा। आप लोगों को ध्यान होगा, खासकर तीनों बैच के स्टूडेंट्स को और उनको भी जो जिन्होंने मेरी किताब पढ़ो तो ऐसे पढ़ो पढ़ी होगी, उसमें मैं अक्सर इमेजेस की बात करता हूं, और पढ़ने के टेक्निक के रूप में मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूं कि पढ़ते समय हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे दिमाग में ज्यादा से ज्यादा अच्छे इमेज बने, स्पष्ट इमेज बने, चटकदार इमेज बने। ये मेरा विशेष जोर रहता है और इसे ही मैं पढ़ने की सबसे अच्छी टेक्निक भी मानता हूं, क्योंकि हम किसी भी चीज को जो समझ पाते हैं वो इमेजेस के थ्रू समझ पाते हैं। ये पूरा सिद्धांत मैंने उन लोगों को, स्टूडेंट्स को समझाया भी है, किताबों में भी है मेरे पढ़ो तो ऐसे पढ़ो में, और कई बार मैंने डेली ऑडियो में भी उसकी चर्चा की है, इसीलिए यहां दोहराने का मैं ज्यादा मतलब नहीं समझता। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आपने तमाशा फिल्म देखी हो तो कितने खूबसूरत तरीके से ये जो इमेजेस की जो थ्योरी है उसका इस्तेमाल किया गया है। आप उस प्रसंग को याद कीजिए अगर आपने फिल्म देखी है तो, और अगर नहीं देखी है तो भी मैं इसी तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरी बातों को समझने में आपको ज्यादा जद्दोजहद न करनी पड़े, कि जब वो लड़का एक छोटा सा बच्चा है जो बाद में बड़ा होकर रणबीर कपूर बनता है, वो जब शिमला के एक टीले पर जाकर के एक बूढ़े आदमी से कहानियां सुनता है, स्टोरीज सुनता है, तो स्टोरीज में राम के प्रसंग होते हैं, महाभारत के प्रसंग होते हैं, और जो यूरोपियन और जो दूसरे मिथक होते हैं उनके प्रसंग होते हैं, फेरी टेल्स होती हैं। और आपने ध्यान दिया होगा कि जब वो बच्चा कहानियां सुनता है तो देखा होगा आपने कि साइड में ये दिखा, उसको घटता हुआ दिखाया जाता है कि राम को राम के साथ सीता वनवास जाने के लिए किस तरीके से कह रही हैं, रावण किस तरीके से आता है और सीता का हरण करके ले जाता है। ये सारे प्रसंग वो अपने दिमाग में देखता है और वो इस बात का प्रमाण है कि अब वो जो कहानी को समझ रहा है वो अपने इमेजेस के थ्रू समझ रहा है। और उसकी इमेजेस वो कहां से बनी है, बड़े खूबसूरत तरीके से दिखाया है, कहीं वो सीता की जगह पर अपने सर्वेंट की इमेज को बना देता है, लगा देता है, या दूसरे पात्र की जगह पर अपने सर्वेंट की इमेज को लगा देता है, कहीं जब अपने गांव में उसने रामलीला देखा, रामलीला के जो चरित्र थे उनके चेहरों को किसी को राम पर फिट कर दिया, तो कहीं रावण के चेहरे पर फिट कर दिया। तो इस तरीके से जो कुछ भी वो अपने जीवन में देखा है उसने, या कह लीजिए कि जिनके संपर्क में आया है, या जो यथार्थ जीवन में उसने जिया है, अनुभव किया है, उन्हीं को वो इमेजेस के फॉर्म में क्रिएट करता जाता है। यानी कि आप देखिए कि कहानी वह सुन रहा है, कहानी सुनाने वाला सुना रहा है, लेकिन उसका दिमाग अपनी तरफ से उस कहानी को रिक्रिएट भी कर रहा है इमेजेस के माध्यम से, और उस पर, उस आधार पर वो उसको समझ रहा है। मित्रों, यहां जो मैं बात खासकर स्पेशली इस चरण में जो लाइफ मैनेजमेंट का चरण है उसमें जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो ये कि नो डाउट कि हम अपनी परिस्थितियों की उपज होते हैं, हमारी परिस्थितियां हमारा निर्माण करती हैं, लेकिन हम पूरी तरह से इसी के गुलाम भी नहीं होते, क्योंकि जो परिस्थितियां होती हैं वो तो होती हैं, परिस्थितियां घटेंगी ही, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कर सके होते तो हम कर चुके होते और उन सब घटनाओं को घटने ही नहीं देते, वो जो इंसिडेंट्स थे वो बियॉन्ड आवर कंट्रोल थे, वो हमारे नियंत्रण से परे थी वो घटनाएं, इसीलिए वो घटी। तो घटनाएं तो घटेंगी, तो अब हम क्या करें, हम क्या करें, क्या उन घटनाओं के विक्टिम बन जाएं? घटनाओं को हम घटने से तो नहीं रोक सकते मित्रों, लेकिन उन घटनाओं को हम लेते कैसे हैं ये जरूर हमारे हाथ में है। यही है रिक्रिएशन, घटना घट गई, एक चीज क्रिएट हो गई, लेकिन हमारे ऊपर उसका इंपैक्ट कैसे पड़ा, कितना पड़ा, किस रूप में पड़ा, ये रिक्रिएशन ऑफ दैट इवेंट है। और ये रिक्रिएशन की ताकत हम में होती है, जैसे कि वो स्टोरीज को अपने दिमाग में क्रिएट करता है, और उसी स्टोरीज को क्रिएट करके फिर उसी के आधार पर आप देखिए कि वो अपने पूरे जीवन को आगे बढ़ाता है, और फिल्म की जो कहानी है फिर उसी को बेस बना करके आगे तक चलती जाती है, और अंत में कितने बदले हुए फॉर्मेट में हमारे सामने आती है। कहानियां वही रहती हैं जो बचपन में वो सुना होता है, लेकिन उसको वो रिक्रिएट कर चुका होता है। दोस्तों, हम सबके जीवन में अच्छा बुरा सब कुछ होता है, सरल कठिन, लाभ हानि सब कुछ हमारे जीवन में आता है, ये सब जीवन के स्वाद है, साल्ट ऑफ द लाइफ है, लेकिन हम उन्हें लेते कैसे हैं, उनका पुनर्निर्माण कैसे करते हैं, पुनर्चक्रण कैसे करते हैं, उन्हें प्रसंस्कृत कैसे करते हैं, प्रोसेस्ड कैसे करते हैं, ये हमारे ऊपर है। हम घटनाओं को कभी भी ज्यों का त्यों एक्सेप्ट नहीं करते, वो घटनाएं हमारे दिमाग में, दिल में, हमारे जीवन में उसी तरह से नहीं बसती हैं, वो प्रोसेस्ड फॉर्म में बसती हैं। जैसे कि अगर आप सॉस खा रहे हैं तो बना तो वो टमाटर से है, लेकिन वो टमाटर ही नहीं है, टमाटर तो 5 दिन में सड़ जाएगा, लेकिन ये जो सॉस है ये 5 महीने तक आपके पास बना रहेगा, तो प्रोसेस्ड फॉर्म है। जीवन में हम इसी तरीके से चीजों को प्रोसेस्ड फॉर्म में लेते हैं मित्रों, ये क्षमता हमारे अंदर होती है, और मैं चाहूंगा कि हम सब जीवन के इस खासकर साइंस को समझकर, घटनाओं की इस प्रक्रिया को समझकर उसके साथ अपने हित में बेहतर से बेहतर व्यवहार करने की कोशिश करें ताकि हम अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकें। मित्रों, इसलिए क्योंकि अंततः जीवन तो जीना ही होता है, अब यह हमारे हाथ में है कि हम उस जीवन को जी कैसे रहे हैं। प्लीज डोंट अलाउ योर लाइफ टू बी द स्लेव्स ऑफ द इवेंट्स। आप अपनी जिंदगी को घटनाओं का गुलाम बनने मत दीजिए, उससे उबारने की हर संभव कोशिश कीजिए। हम में यह क्षमता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं कल की AIR न्यूज पर। फ्रेंड्स, कल की AIR न्यूज में कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी। इसमें अगर हम सिविल सर्विस के लिहाज से बात करें तो जो सबसे जो महत्वपूर्ण खबर है, और सच पूछे तो जिसकी परीक्षा में हो सकता है कि सीधे सीधे भी ये बात पूछ ली जाए, और अगर सीधे सीधे न भी पूछा जाए तो आप इस घटना का, इस न्यूज का इस्तेमाल दूसरी बहुत सी चीजों में कर सकते हैं, और वह है सुप्रीम कोर्ट का दिया गया एक डिसीजन जिसकी बड़ी विस्तार के साथ न्यूज में चर्चा की गई है। देखिए, एक बड़ी सिंपल सी चीज होती है फ्रेंड्स कि अगर कोई बहुत बड़ा नेशनल इवेंट है या इस तरह के डिसीजन है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, बहुत बड़ी बात है, तो अगर न्यूज में, मैं रेडियो न्यूज की बात कर रहा हूं, अगर रेडियो न्यूज में उसका उल्लेख बहुत ज्यादा होता है तो मान करके चलिए कि बहुत महत्वपूर्ण घटना है, और अगर वो महत्वपूर्ण घटना है तो कहीं ना कहीं सही मायने में वो फिर हमारे सिविल सर्विस के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये तो आप जानते ही हैं कि सिविल सर्विस में जो जनरल नॉलेज का जो 60% to 70% जो पोर्शन होता है जनरल स्टडीज का, चाहे वो प्री की बात हम करें या चाहे हम मेंस की बात करें, उसमें चार सब्जेक्ट का रोल होता है। सबसे ज्यादा रोल चार सब्जेक्ट्स के होते हैं, जिसमें एक होता है हमारा पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटी, दूसरा होता है इकोनॉमिक्स, तीसरे होते हैं ज्योग्राफी, और नो डाउट कि फोर्थ होता है हिस्ट्री, और हिस्ट्री का सबसे बड़ा हिस्सा होता है हमारा फ्रीडम मूवमेंट। ये चार सब्जेक्ट मिलकर के लगभग 2/3 ऑफ आवर जनरल स्टडीज सिलेबस को कवर कर लेते हैं। तो डेफिनेटली यदि रेडियो के इस न्यूज का संबंध इन चारों में से किसी से है तब तो वो हमारे लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है, और अगर इससे बियॉन्ड है तो नो डाउट कि वो इवेंट तो इंपॉर्टेंट है लेकिन सिविल सर्विस में उससे हमें बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। हां, क्योंकि वो इवेंट इंपॉर्टेंट है तो वी शुड नो अबाउट दैट, उसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो दोस्तों, जो जिस न्यूज के बारे में मैं बात कर रहा था वो था खासकर सुप्रीम कोर्ट ने जो एक डिसीजन दिया है, इसका इस डिसीजन की थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि आपको मालूम है कि राजीव गांधी जी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, शायद 1989 की बात है, जब उत्तम चुनावी दौरे पर तमिलनाडु में थे तो एक बम विस्फोट में, आत्मघाती विस्फोट में कह लीजिए, उनकी हत्या कर दी गई थी, और इसके बाद जो लोग पकड़े गए उन्हें सजा दी गई और एक तरीके से जीवन आजीवन उनको कारावास की सजा दी गई। जब आजीवन कारावास की सजा दी गई तो तमिलनाडु की सरकार ने, चूंकि वो जो सजा पाने वाले जो अपराधी थे वो तमिलनाडु के थे, तो तमिलनाडु की सरकार ने उनको माफी दे दी, मतलब जो गवर्नर को जो अधिकार है, जैसे राष्ट्रपति जी को अधिकार है कि वो सजा को माफ कर सकते हैं, उसी तरीके से राज्यपाल को भी अधिकार होते हैं, और फिर तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल से रिक्वेस्ट करके जो भी हुआ हो उससे माफी उनको मिल गई, उनको छोड़ दिया गया। लेकिन जब याचिका दायर की गई तो फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और फिर से उनको अंदर कर दिया गया। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपनी रूलिंग दी है और डिसीजन दिया है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं आपको घटनाक्रम बता रहा था। जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो ये कि यदि किसी भी अपराधी पर जो मामला चला है वो केंद्रीय कानून के अंतर्गत चला है, केंद्रीय कानूनों के उल्लंघन से या केंद्रीय कानून के दुरुपयोग से केंद्रीय कानून के अंतर्गत चला है तो उसका, अगर उसके आधार पर उसको अपराधी ठहराया गया है तो उसको माफ करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है, और अगर राज्य भी करना चाहती है तो बिना केंद्र सरकार की अनुमति के वो ऐसा नहीं कर सकती। पहली बात, मतलब केंद्रीय कानून के अंतर्गत यदि कोई मामला चलाया गया है तो, और दूसरी जो बात इन्होंने कही है कि अगर मामले की जांच केंद्रीय किसी एजेंसी के द्वारा की गई है तब भी सेम वही बात लागू होगी कि फिर वो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, कि वह उनकी सजा को कम कर सके, माफ कर सके, ये राज्य सरकारों के पास अधिकार नहीं है। ये मैं समझता हूं कि दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है। अब आप देखेंगे कि इसमें कौन कौन से मामले इसको लेकर के बनते हैं। फिर यहां पर एक संघवाद का मामला आ जाता है, जिसका हम लोग बार बार उल्लेख करते हैं कि संघ में जो हमारा जो यूनियन फेडरल जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें राज्य के अपने अधिकार हैं और केंद्र के अपने अधिकार हैं, और इसमें केंद्र प्रिवेल करता है सही मायने में, मतलब जो संघात्मक स्वरूप है हमारे देश का, हमारे संविधान का, वो केंद्र की तरफ झुका हुआ है, इन फेवर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसको आधार बनाकर अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, इसको आधार बनाकर आप इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं, सोचा जाना चाहिए, और मैं चाहूंगा कि आप इस पर सोचें, आप इसे मेरे द्वारा दिया गया एक होमवर्क समझ लें। लेकिन सोचने के लिए मुझे लगता है कि आपके पास सिर्फ आज का ही वक्त है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि कल सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को लेकर के डेफिनेटली एडिटोरियल कमेंट्स आ जाएंगे, और एक दो तीन दिन के अंदर कुछ आर्टिकल्स भी आ जाएंगे, और शायद वो जो आर्टिकल्स होंगे और जो एडिटोरियल कमेंट्स होंगे उसका बेस ये फेडरल स्ट्रक्चर ही, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल स्ट्रक्चर है शायद वही होगा। पढ़ने के बाद फिर जब आप सोचेंगे तो आपके पास सोचने के लिए कुछ नहीं रहेगा, बेहतर है कि अभी सोच लें, यहां तक कि सोचने के बाद कुछ पॉइंट्स भी नोट कर लें, और कल फिर जब एडिटोरियल कमेंट आर्टिकल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे तो फिर आप उससे मैच करें, आप कहां तक सोच पाए, ये कहां तक सोच पा रहे हैं, आपकी बातें कितनी जायज ठहर रही हैं, कितनी गलत हैं, ताकि आप अपने को करेक्ट कर सकें। मित्रों, सिविल सर्विस के लिए इसी तरह की आपको कैपेसिटी अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। दोस्तों, इसी के संदर्भ में आपने देखा कि न्यूज में दो तीन आर्टिकल्स का उल्लेख किया गया था। मुझे लगता है कि चूंकि हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और एक तैयारी करने की एक पद्धति होती है डिटेलिंग, जिसके बारे में मैं कभी चर्चा करूंगा, यानी कि जो बहुत महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक हैं कह लीजिए, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, क्योंकि उसमें समझने से वो बात नहीं बनती। जैसे न्यूज में आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति को अधिकार है क्षमादान का, तो उसके लिए आर्टिकल 72 और 161 की बात की गई, राज्यों के बारे में फिर 42 या कुछ इस तरह के आर्टिकल्स की बात की गई, उसको आप चेक कर लीजिएगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम अलग से नोट कर लेते हैं, बार बार दोहराते रहते हैं, साल भर तक ये हमारा साथ देते हैं, क्योंकि साल भर के बाद फिर से नए इश्यूज आएंगे और तब ये पुराना पड़ जाएगा, लेकिन चूंकि साल भर तक ये हमें चीजें अपने पास बना करके रखनी है तो हम उनको दोहराते रहते हैं। तो मित्रों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी, और इसी संदर्भ में थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कल मैंने बातचीत में या परसों बातचीत में मैंने संविधान संशोधन के बारे में आपसे चर्चा की थी, और संवे संशोधन के अंतर्गत मैंने न्यायिक नियुक्ति आयोग की जो केंद्र सरकार ने जिसके बारे में विधेयक पारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे टर्न डाउन किया था, उसकी चर्चा की थी। मैं आपको बता दूं कि शायद मैं 100th संविधान संशोधन बोल गया था, लेकिन उससे पहले मुझे याद है कि मैंने 100th संविधान संशोधन के अंदर भारत और बांग्लादेश में जो अब कुछ गांव का आपसी में एक्सचेंज किया गया है उससे रिलेटेड है। तो जो 100वां संविधान संशोधन है, याद रखें कि वो भारत और बांग्लादेश ने आपस में जो जमीन एक्सचेंज की है सीमा पर, उससे रिलेटेड है। और ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी कि जो से संबंधित जो संशोधन था वो 1919 था, इसके बारे में रविकांत दीक्षित जो मेरठ के हैं उन्होंने मुझे ध्यान दिलाया है, तो इसके लिए रविकांत आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों में से यदि किसी ने नोट कर लिया हो तो प्लीज इसे करेक्ट कर लेंगे। मित्रों, एक जो खबर थी वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से रिलेटेड खबर थी, जिसमें पुत्र विवाहित पुत्री को भी एक कंपनसेटरी ग्राउंड पर नौकरी मिलने का हकदार बना दिया गया है। कंपनसेटरी ग्राउंड उसको कहते हैं जब किसी पिता की या माता की जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है, बीच में ही किसी वजह से मृत्यु हो जाती है तो अनुकंपा नियुक्ति के तौर पर उनके बच्चों को कोई नौकरी दे दी जाती है। तो अभी तक ये था कि बेटे को ये अधिकार होता था या बेटी को भी अधिकार होता था अगर वो अविवाहित है, तो अब हाईकोर्ट ने कहा है कि नहीं, अगर वो विवाहित पुत्री है तो उसे भी ये अधिकार होगा। चूंकि ये हाईकोर्ट का डिसीजन है इसलिए इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ एक बात और है और वो ये कि चूंकि ये नारी अधिकार से जुड़ा हुआ मामला है तो उस लिहाज से फिर ये हाईकोर्ट का डिसीजन एक तरीके से सिविल सर्विस एग्जाम के लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मित्रों फिर एक खबर थी भारत और नेपाल के तनाव की स्थिति आपको मालूम है, एक लंबे समय से ये चीज चल रही है। खासकर नेपाल अब लगातार भारत पर ये आरोप लगा रहा है कि भारत उसके यहां वस्तुओं की आपूर्ति होने में बाधा पैदा कर रहा है, मतलब एक दबाव डाल रहा है और उसको लेकर के नेपाल बहुत परेशान भी है। तो भारत ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि भारत ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, नेपाल को चाहिए कि जो इसका जो इसकी जो समस्या है उसका जल्दी से जल्दी राजनीतिक समाधान निकाले। और राजनीतिक संकट क्या है आपको मालूम है कि वहां जो मधेशीय जो आंदोलन कर रहे हैं, अभी जो नया संविधान नेपाल में लागू किया गया उसके अगेंस्ट में, तो वो एक बराबरी का हक मांग रहे हैं। तो भारत ने स्पष्ट कह दिया कि इसका आप राजनीतिक समाधान निकालिए, भारत पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का कोई विशेष मतलब है नहीं, ये सारी बातें गलत हैं, झूठी हैं। इसके बाद दोस्तों ज्यादातर तो खबरें आपको मालूम है कि तमिलनाडु में जो बाढ़ की स्थिति आई हुई है जबरदस्त रूप से उसको लेकर के था और चैनल्स में आप देख रहे हैं कि ढेर सारी चीजें आपको जानने और समझने को मिल रही हैं। परीक्षा की दृष्टि से हम यही कह सकते हैं कि दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं, खासकर जो जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो लगातार ये बात कही जा रही है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज से पूरी दुनिया जूझ रही है, उत्तराखंड में जो बाढ़ आई और अभी तमिलनाडु में जो बाढ़ आई है, कुछ लोग उसे क्लाइमेट चेंज का ही एक प्रमाण मान रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ सीमा तक है। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि 100 साल पहले का रिकॉर्ड टूट, 100 साल बाद इस तरह की बारिश हुई है, तो मुझे लगता है कि 100 साल पहले भी इस तरह की बारिश हुई थी। अगर 100 साल पहले इस तरह की बारिश हुई थी तो उस समय क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा थ्रेट नहीं था, यानी कि कभी कभी ऐसा हो भी जाता है अगर 100 साल पहले हुआ था तो। लेकिन इस बार की तबाही में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो कंस्ट्रक्शन जो पॉपुलेशन के प्रेशर से और माइग्रेशन के कारण जो शहरों की तरफ जो आबादी बढ़ रही है तो उसके कारण जो एक नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम होता है, नेचर ने बनाया हुआ है कि पानी खुद बहकर बाहर निकल जाता है, उस ड्रेनेज सिस्टम को हम बहुत जबरदस्त रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। पानी को निकलने का रास्ता मिलता नहीं है और नतीजन वो पानी वो उसी क्षेत्र में भरता चला जाता है और एक तबाही की स्थिति बन जाती है। तो इसको लेकर के आप थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं कि शहरों में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो किस तरीके से लगातार एक दबाव में आता चला जा रहा है। क्लाइमेट चेंज की बात मैंने कही, नॉर्थ ईस्ट जो मानसून है उसके बारे में मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं और खासकर थोड़ा सा आप वॉच करें कि तमिलनाडु में जो ये संकट पैदा हुआ है इस संकट को मैनेज करने के लिए क्या किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लगातार तालमेल बैठा हुआ बना हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री, वित्त मंत्री, लगातार स्वास्थ्य मंत्री संपर्क में है स्टेट गवर्नमेंट से और पूरी मदद का आश्वासन उन्हें दे रहे हैं, फंड्स भी रिलीज कर दिए गए हैं, सेना के जो तीनों विंग्स हैं वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगे हुए हैं। फिर आप देख रहे हैं कि तटरक्षक जो सेनाएं होती हैं, तटरक्षक बल, वो लगातार काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है वो लगा हुआ है। तो आपको केवल ये देखना है कि जब इस तरह की आपदा आती है तो किस किस तरीके से उनको मैनेज किया जाता है, तो आपके अंदर एक सेंस प्रिवेल हो जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको मालूम है कि आपदा प्रबंधन आपके सिलेबस में है। तो दोस्तों ये तमिलनाडु के बाढ़ के बारे में थी। अब मैं आता हूं आज की प्रेस क्लिपिंग्स पर। नो डाउट मैं आज आपको ढेर सारी प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रेस क्लिपिंग्स है मित्रों वो ये है, एक तो दैनिक भास्कर में भारत के पर्यटन को लेकर के कुछ अच्छा मटेरियल दिया हुआ है और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में जो राजस्थान की चीफ मिनिस्टर है वसुंधरा राजे जी, उनका टूरिज्म पर ही एक बहुत अच्छा लेख है। ये आप जरूर पढ़िएगा, आपको ध्यान होगा कि पिछले साल टूरिज्म पर सीधे सीधे निबंध पूछा गया था और मैंने ये देखा है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स जिन्होंने फिर सक्सेस के बाद अपने इंटरव्यू दिए हैं, जब ऐसे के बारे में उनसे पूछा गया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि लगभग 75% मोर देन 75% स्टूडेंट ने यही कहा कि उन्होंने टूरिज्म पर ही निबंध लिखा और अच्छे उनको नंबर भी मिले हैं। टूरिज्म पर निबंध लिखने पर उनको अच्छे नंबर भी मिले हैं। इसका मतलब यह नहीं कि ये विषय अब पुराना पड़ गया है, ये विषय हमेशा नया रहेगा क्योंकि भारतीय संदर्भ में टूरिज्म बहुत ज्यादा मायने रखता है क्योंकि ये बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्री है। हालांकि ठीक है वो इंडस्ट्री उस तरीके से नहीं है, लेकिन सर्विस सेक्टर में तो ये आती ही है। जबकि भारत में इतना पोटेंशियल है और आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि हम केवल हमारे यहां 0.65% टूरिस्ट आ पाते हैं, 0.65%, 1% भी दुनिया के टूरिस्ट हमारे पास नहीं आते। और फिर आपको यह भी जानकर के आश्चर्य होगा, खासकर जो वसुंधरा राजे जी ने लिखा है कि कंबोडिया का जो अंकोरवाट मंदिर है उसमें जितने टूरिस्ट आते हैं, सोचकर केवल एक मंदिर को देखने के लिए, उतने कुल टूरिस्ट भारत में नहीं आते, सोच करके देखिए, जबकि भारत में इतना पोटेंशियल है। तो इसमें आपको काफी अच्छे डेटा भी मिलेंगे, कंटेंट भी मिलेंगे और कुछ बहुत अच्छे आइडियाज भी मिलेंगे कि कैसे जो टूरिज्म का जो सेक्टर है वो बहुत अधिक पोटेंशियल वाला है। तो आप इसे जरूर देखिएगा। और इसके बाद फिर एक है बिजनेस स्टैंडर्ड का, जिसमें खासकर मिडिल क्लास को लेकर के उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और चाइना का जो मिडिल क्लास है उसके साथ उन्होंने तुलना भी की है। मैं मिडिल क्लास की बात इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि जो लिबरलाइजेशन के बाद भारत में बहुत तेजी से जो मिडिल क्लास है वो उभरा है, उसकी संख्या या कह लीजिए कि उसका परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन में काफी बढ़ा है। और इकोनॉमिक ग्रोथ जो इंडिया में दिखाई दे रही है वो बेसिकली इस मिडिल क्लास के बढ़ने के कारण ही है, क्योंकि सबसे बड़ा जो कंज्यूमर होता है, जो वस्तुओं का जो उपभोक्ता होता है, वो मिडिल क्लास के लोग ही होते हैं। अपर क्लास के लोग तो होते ही हैं, लेकिन अपर क्लास में तो बहुत थोड़े से लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास में बहुत लोग पहुंच सकते हैं। ये बात अलग है कि इस बढ़ोतरी के बाद, संख्या की बढ़ोतरी के बाद, भारत का अभी जो मिडिल क्लास है उसका टोटल पॉपुलेशन में जो हिस्सेदारी है वो हार्डली 3-4%, ये बहुत ज्यादा नहीं है, जबकि चीन और लैटिन अमेरिका में 11% तक है, यहां तक कि अफ्रीका में भी भारत की तुलना में ज्यादा है। इसमें इन्होंने एक बात एस्टेब्लिश की है कि 2008-09 के बाद ये जो मिडिल क्लास की जो ग्रोथ थी वो कम हुई है, और वही एक बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी उसके बाद धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगी, क्योंकि जो कंज्यूमर जो वर्ग था उसकी ग्रोथ रुक गई थी। उन्होंने उम्मीद की है कि सातवें वेतन आयोग के बाद हो सकता है कि फिर से ये जो मिडिल क्लास है ये एक्सपेंड करे और आर्थिक, भारत की आर्थिक जो गति है उसको तेजी, आर्थिक दर है उसको तेजी मिल सके। तो मित्रों, इसी के साथ ही और दूसरे बहुत से न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स हैं जो मैं नॉलेज सेंटर में प्रोवाइड कर रहा हूं, इन्हें आप देख लेंगे, अलग से उनकी चर्चा करने की जरूरत मैं फिलहाल नहीं समझ रहा हूं। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं ईमेल पर। बहुत से मेल आए हैं, सभी साथियों को जिन्होंने मेल लिखे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उन सबका आभार। और इसी में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, प्रेमराज मीणा जो जयपुर से हैं, ऋषि जेठी लुधियाना से हैं, शादाब अकबर कुरैसी नई दिल्ली से हैं, और सतीश चंद्र बघेल मुंबई से हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं इजाजत चाहूंगा, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।